ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद छह अध्याय दो श्लोक संख्या 49। म्रियमाणः हरिनाम घृणन् पुत्र उपचारितम् अजामिलः अपि अगात् धाम किम् उत श्रद्धया घृणन्। म्रियमाणो हरे नाम घृणन् पुत्र उपचारितम् अजामिलोऽपि गाधाम किमुत श्रद्धया गृणन्। म्रियमाणो हरे नाम घृणत्पुत्र उपचारितम् अजामिलोऽपि गाधाम किमुत श्रद्धया गृणन्। म्रियमाणो हरे नाम घृणत्पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽपि गाधाम किमुत श्रद्धया गृणन्। म्रियमाणः मृत्यु के समय हरे हे नाम हरि का पवित्र नाम घृणन उच्चारण करते हुए पुत्र उपचारितम अपने पुत्र की ओर इशारा करते अजामिलः अजामिल अभी तक अगर गया धाम आध्यात्मिक जगत किम उत्त क्या कहा जा सकता है। श्रद्धया श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक घृणन उच्चारण करते हुए अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धापूर्वक तथा निर अपराध भाव से भगवत नाम का उच्चारण करता है तो वह भगवान के पास लौटेगा इसमें संदेह कहां है। तात्पर्य मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाता है क्योंकि उसके शारीरिक कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। उस समय भले ही किसी ने अपने जीवन भर भगवान नाम का कीर्तन करने का अभ्यास किया हो किंतु वह स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण ना कर पाए फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम के कीर्तन का सारा लाभ मिलता है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है क्यों ना हम जोर जोर से तथा स्पष्ट रूप से भगवान नाम का कीर्तन करें। यदि कोई ऐसा करता है तो यह संभव है कि मृत्यु के समय भी प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम का ठीक से कीर्तन कर सके। निष्कर्ष के रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करता है उसकी भगवत धाम बिना किसी संदेह से वापसी बिना किसी संदेह से सुनिश्चित है। ओम अज्ञान तिम्रंथस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया और यदि भी उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धापूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है तो भगवान के पास लौटेगा, इसमें संदेह का है। तो अजामिल के अंत समय में विष्णुदूत आए, उससे पहले यमदूत भी आ गए थे। ये देखते हुए कि अजामिल ने भगवान नाम का उच्चारण किया है और विष्णुदूतों का आना पड़ा क्योंकि विष्णुदूतों ने देखा ये तो भगवान का नाम ले रहा है, विष्णु का नाम ले रहा है, हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, तो निश्चित रूप से हमें जाना चाहिए इसकी रक्षा करने के लिए। तो हरिनाम जो है हमारी रक्षा करता है। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान नाम का उच्चारण करता है रक्षा प्रदान करना शुरू हो जाता है, भगवान रक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं उस भक्त के। इस अध्याय के आखिर में प्रभुपाद जी ने पूरक टिप्पणी, पूरक टिप्पणी का मतलब है सप्लीमेंटरी नोट दिया है और इस तात्पर्य में टीका में टिप्पणी में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस दिन अजामिल ने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था, ये दसवीं संतान हुई थी, होने वाली थी, हुई भी नहीं थी, और बच्चे का नाम नारायण रखा गया था तो उसी दिन सारे उसके पाप नष्ट हुए, जीवन के अंतकाल में नहीं। और उसके बाद फिर इस संकेत नामाभास से, क्योंकि वो अपने बच्चे को ही पुकार रहा था, भगवान को नहीं पुकार रहा था, और उस नामों का जप जो है पाप से बचने के लिए नहीं कर रहा था, वो नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा था, वो अपने बच्चे को ही बुला रहा था। इस कारण से क्या हुआ, उसको इसका आध्यात्मिक लाभ मिला, सारे पाप उसके नष्ट हो गए, जितने भी उसने पाप किए सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। केवल ये बोलना उसके लिए पर्याप्त था कि आज से हमारे इस बच्चे का नाम नारायण है। तो ये नाम की महिमा है, नाम की शक्ति है, नाम का प्रभाव है। और उसके बाद जितनी बार भी सैकड़ों बार उसने नामों का उच्चारण किया, हजारों बार उसने नामों का उच्चारण किया अपने को बच्चे को बुलाते हुए, वो सब उसकी शुद्धिकरण के लिए था और आध्यात्मिक प्रकृति कर रहा था। तो भगवान भी जब वैकुंठ में लक्ष्मी जी को कह रहे हैं कि ये देखो अजामिल ने मेरा नाम लिया है, ये मेरा भक्त है, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए, आई मस्ट प्रोटेक्ट हिम, क्यों, क्योंकि इसने मेरा नाम लिया है। तो ये नाम का इतना जो है महत्व है नाम, क्योंकि भगवान तो अदोषदर्शी है, भगवान किसी में दोष नहीं देखते हैं, वो तो ये देखते हैं कि इसे मेरा नाम लिया है बस। अपीचे शूद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ईसा। ये नाम की महिमा है, एग्जैग्रेशन नहीं है, बड़ा चढ़ा के कुछ भी वर्णन नहीं किया जाता शास्त्र में, एग्जैग्रेशन नहीं होता है, ये नाम की महिमा है। और उसको सही दृष्टि से हमें इसको समझना होगा क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो पद प्राण दिया है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, नाम और रूप में कोई भेद नहीं है, नाम और गुण में कोई भेद नहीं है, नाम और उनकी लीलाओं में कोई भेद नहीं है, क्योंकि नाम ही कृष्ण है और कृष्ण ही नाम है। तो यह अद्भुत नाम है भगवान का। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जब विदग्ध माधव लिख रहे थे जगन्नाथपुरी में, अधिकांश उन्होंने भाग विदग्ध माधव का पुरी में लिखा था और बाकी उन्होंने उसको उसका समापन किया था मुंशी राम वृंदावन में, लेकिन अधिकांश समय जो लिखा उन्होंने वो पूरी में ही लिखा। और वहां पे जब वो विदग्ध माधव की रचना कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने देखा विदग्ध माधव के श्लोक को देखा और चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रभावित हुए। क्या श्लोक था? तुंडे तांडवनी रतिन बितुनते तुंडावधि लब्धये कर्ण क्रोण कणमनी घटयते कर्णार बुधे ब्याह स्नेहा चेत प्रांगणी संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति मोह जाने जनिता कियत भीर अमृतय कृष्णति वर्ण द्वय। तो इसमें श्री रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, हा कृष्ण ये दो शब्द ना जाने कितने अमृत को लेकर उत्पन्न हुए हैं। देखो जब नटी के समान ये मुख में नृत्य करने लगते हैं तब बहुत से मुख प्राप्त करने की लालसा जाग उठती है। जब कर्ण कुहर में प्रवेश करते हैं तो अरबों करोड़ों के लिए स्प्रिया होने लगती है। जब चित्रूपी प्रांगण में संगनी रूप से उदित होते हैं तो समस्त इंद्रियों को हर लेते हैं, सारी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं। चेतक प्रांगण क्या है? चेतक प्रांगण, चेतक प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति, सारी इंद्रियों को जो है क्या बनाते हैं, इनर्ट कर देती है, हर लेती है। तो ये जीवा में जब ये हरिनाम का उच्चारण होता है, यह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, इस जीवा के अग्रभाव से भी कोई नाम का उच्चारण कर लेता है तो वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये रूप गोस्वामी यहां पे अरबों खरबों कर्ण और मुखों की लालसा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। ये पर्याप्त नहीं बोल रहे हैं, मुख ये दो कर्ण पर्याप्त नहीं है, कितने अरबों खरबों कर्ण होने चाहिए, अरबों खरबों मुख होने चाहिए जिससे हम हरिनाम का उच्चारण कर पाए। कितनी रुचि है, कितना आस्वादन कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी इस नामामृत का आस्वादन कर रहे हैं। क्या हम भी इस तरह से इस तरह की लालसा करते हैं हरिनाम का उच्चारण करते हुए? क्या हमारी भी इसी तरह की आशा रहती है? नहीं रहती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं कि पित्त के रोगी को मिश्री फीका लगता है, लेकिन इलाज क्या है कि उसी मिश्री को बार बार जो है चखा जाए। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि अगर कोई पद्म पुराण का वर्णन आता है कि अगर कोई नाम अपराध से ग्रस्त है तो उसका हल क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो पद्म पुराण में ये वर्णन आता है, बहुत सुंदर श्लोक है ये, लिखा है नाम अपराध युक्ता नाम नामानी एव हरंती अघम अभिशांति प्रयुक्तानी तानी एवार्थ कराणी च। यानी कि अपराधों से अगर बचना है तो एक ही उपाय है कि बार बार नाम का उच्चारण किया जाए। बार बार जब नाम का उच्चारण किया जाता है तो हम नाम अपराध से छुटकारा पाते हैं, ऐसे पद्म पुराण में वर्णन किया है। और ऐसे व्यक्ति को ही कृष्ण वर्णन कहा जाता है। ये श्लोक है श्रीमद भागवत का, कृष्ण वर्णम कुशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधशा। बहुत ज्यादा बुद्धिमान जो है, यानी कि जो बुद्धिमान है वो हरिनाम का उच्चारण करेंगे संकीर्तन यज्ञ में भाग लें, यानी कि जो संकीर्तन यज्ञ में भाग नहीं लेते हैं वो बुद्धिमान नहीं है, सीधी सी बात। तो इस श्लोक में कृष्ण वर्णम का मतलब यह है, श्री जी गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण वर्णम वो व्यक्ति है जो बार बार कृष्ण नाम किसके नाम कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहा है, उस व्यक्ति को कृष्ण वर्णम कहा गया। तो वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखार में से सदा हरिनाम निकलता रहता, इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु गोपाल गुरु गोस्वामी को अपना गुरु बताते हैं, क्यों? क्योंकि जब वो शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो अपने जीवा को रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जीवा जो है नाम निरंतर ले रही है, हरिनाम का उच्चारण निरंतर हो रहा है, उसे रोक नहीं सकते हैं वो अपने आप। तो उसमें फिर वो जीवा को एक दांतों से दबोच लेते हैं। गोपाल गुरु गोस्वामी, गोपाल गुरु, गोपाल का नाम होता है। तो गोपाल कहते हैं कि महाप्रभु ये क्या, आप शौच के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपने जीवा को अपने दांतों में के नीचे दबा लिया है, इसके लिए तो कोई नियम काल नहीं है, हरिनाम तो कहीं भी लिया जा सकता है। और मान लीजिए कि शौच के समय ही आपकी मृत्यु हो जाए, कई लोग तो बाथरूम वॉशरूम में ही मृत्यु हो जाती है, शौच के लिए जाते हैं और जब दरवाजा खोलते हैं तो व्यक्ति वहीं मरा पड़ा है, होता है कई बार ऐसा, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर आप इस समय अगर नहीं उच्चारण कर रहे हैं तो ठीक नहीं लग रहा है। महाप्रभु कहते हैं कि आप तो मेरे गुरु हैं, यू आर माई स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर क्या करते हैं? प्रभुपाद ने कहा इट्स ड्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू फाइंड फॉल्ट इन द डिसिपल। तो ये गुरु का कर्तव्य है, गुरु की जिम्मेदारी है कि शिष्य में दोष देखे। तो ये चैतन्य महाप्रभु में एक तरह से दोष ही देखा, तो महाप्रभु ने कहा आप तो मेरे गुरु हैं, यू आर माई स्पिरिचुअल मास्टर। सो दैट्स वाई उसके बाद फिर उनका नाम गोपाल गुरु बन गया, गोपाल गुरु के नाम से जाने गए। तो कीर्तनीय सदा हरि, ये बड़ा कठिन है, आसान नहीं है कीर्तनीय सदा हरि, क्योंकि इस प्रभुपाद की तात्पर्य की आखिर जो पंक्ति है, आखिरी जो लाइन है, निष्कर्ष के रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करता है उसकी भगवत वापसी बिना किसी संदेश के निश्चित है। यानी कि अगर कोई निरंतर नाम ले रहा है तो समझ लीजिए वो धाम जाने वाला है निश्चित रूप से, और अगर कोई निरंतर नाम नहीं ले पाता है तो इसका मतलब भी थोड़ा सा विलंब होगा, थोड़ा सा समय लगे, बहुत मुश्किल है निरंतर नाम लेना। इसलिए जब शिल रूप गोस्वामी प्रयाग गए थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु को देखकर उन्होंने जब दंडवत किया था, नमो महावद अन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिश्वरमा। और कुछ समय के बाद श्रीपाद वल्लभाचार्य भी वहां पे आए थे। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने देखा कि रूप और अनुपम गोस्वामी वहां पर आए हुए हैं, तो उनको उनका आलिंगन करने के लिए थोड़े से आगे बढ़े हो, तो रूप गोस्वामी अनुपम गोस्वामी पीछे हट गए। उन्हें कहा कि हम बहुत नीच है, बहुत अधम है, अस्पृश यानी कि हमें आप बच हुई, हम छूने लायक नहीं है, अछूत है, वी आर अनटचेबल्स, हमने नीच लोगों का संग किया है, वी आर वेरी वेरी फॉलन, बहुत ज्यादा पापी है, बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है महानंद ले रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हाँ सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, वास्तव में ये आप जैसे कुलीन परिवार के नहीं है, आप तो वैदिक ब्राह्मण है और कुलीन परिवार के हैं, रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है, यू आर अ वेरी ग्रेट स्कॉलर, वैष्णव ब्राह्मण है आप, तो आपके लिए ठीक शोभा नहीं देता, आप मत छुइए, डोंट टच दैट। तो वहां पे फिर श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि ये मैं कैसे मान लूं कि ये अधम है, मैं तो ये देख रहा हूं कि मुख में इनके जीवा में निरंतर हरिनाम का उच्चारण हो रहा है, ये तो निरंतर हरिनाम ले रहे हैं, ये कैसे अधम हो सकते हैं, ये तो सर्वोत्तम है, ये सर्वश्रेष्ठ। फिर वो श्रीमद भागवत का जो माता देवहूति ने श्लोक उदित किया, अहो बतो सुपचतो गरियान यह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जीवा के अग्रभाग से कोई हरिनाम का उच्चारण कर रहा है तो उसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है, सारी तपस्या उसने कर ली है, सारे यज्ञ उसने कर लिए, सारे तीर्थ स्थानों में उसने स्नान कर लिया है, और क्या बचा ही क्या है। जो हरिनाम का उच्चारण निरंतर कर रहा है, हरिभक्ति लास में लिखा है कि निरंतर हरिनाम का उच्चारण कौन करता है, जिसने 100 जन्मों तक भगवान वासुदेव की सेवा पूजा की है, उसके मुख से निरंतर हरिनाम निकल रहा है। तो यानी कि अभी 100 जन्म हुए नहीं हमारे, पौनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमती सौ महात्मा सुदुर्लभ, वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। तो हम सब चाहते हैं निरंतर हरिनाम लेना, हो नहीं पाता है। ठाकुर भक्तिनोद ने एक स्थान में बताया कि शायद जैन धर्म में या भजन वैसे बताया, भक्त ठाकुर कहते हैं कि निरंतर हरिनाम लेने का मतलब है कि शौच क्रिया को छोड़कर और अपने जो नियत कर्म है उसको छोड़कर बाकी सभी समय आप हरिनाम लेते हैं तो वही है कीर्तनिया सदा हरि। भक्त ठाकुर बहुत प्रैक्टिकल आंसर थे। तो कई बार होता है कि हम भी देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज भी मीटिंग से बैठे हैं, जीबीसी बॉडी की मीटिंग बैठे हैं, और उनकी मीटिंग्स ऐसी होती है कीर्तनीय सदा हरि की तरह, नॉन स्टॉप मीटिंग्स होती रहती है, निरंतर मीटिंग्स होती रहती है, लेकिन जैसे ही मीटिंग से बाहर निकलते हो जहां भी महाराज को थोड़ा सा भी समय मिलता है उनका हाथ अपने आप ही जपमाला में जाता है, इसको कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि। हो राधिका रमण की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो निरंतर हरि नाम लेने की जो स्प्रिया है, इच्छा है, वो बनी रहती है। कितने सदा हरि का मतलब ये है कि आपके हृदय में लालसा बनी रहती है निरंतर हरि नाम लेने की। कई बार नहीं ले पाते, कई बार ले पाते हैं, कलयुग का प्रभाव है, लेकिन स्प्रिया बनी रहती है निरंतर हरि नाम लेने की। ये है कितने सदा हरि का मतलब। तो जहां भी मौका मिलेगा अपने आप हाथ जो है माला में जाएगा। ये नहीं कि हम फीडबैक कहीं भूल गए, पता नहीं कहां रख दिया हमने। हूज फीडबैक इज क्राइम, प्रोफेसर ने एक बार बोला। एक बार किसी ने जब माला अपनी फीडबैक लटका के चला गए, दरवाजे पे लटका के चले गए, तो प्रोफेसर हूज फीडबैक इज क्राइम, कि किसकी माला जब माला फीडबैक यहां रो रही है। क्राइंग इन सेपरेशन फ्रॉम द डिवोटी, भक्तों से विरह होने के कारण हरिनाम प्रभु भी जो है वो रो रहे हैं। तो कीर्तनियां सदा हरि बहुत कठिन है, आसान नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए, और क्वालिफिकेशन यही है श्रील रूप गोस्वामी ने जो बताया वो क्वालिफिकेशन है कि योग्यता यही है कि मैं बहुत अधम हूं, मैं बहुत पापी हूं। ये जब योग्यता जब प्राप्त कर लेते हैं तो मुख्य हरिनाम निकलने लगता है। इसलिए चैतन्य महापुरुष शिक्षाष्टक में कहा है क्या तृणादपि सुने चेना तरोरपि सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा यही हमारा स्वरूप है, दिस इज अवर स्वरूप। आत्मा का स्वरूप यानी कि वैष्णव होना का मतलब यही है, त्रिनादपि सुने चेना तरोरपि सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरी, यानी कि जो सदाहरी नाम ले रहा है उसमें चार योग्यताएं हैं। बहुत कठिन है कि नहीं? बहुत कठिन। इस स्तर पर पहुंचना बहुत कठिन है, निष्ठा के स्तर पर। ये भक्ति ठाकुर के अनुसार जो उन्होंने शिक्षाष्टक के ऊपर अपना अपना भाष्य दिया है, टीका दी है, ये जो निष्ठिता भजन क्रिया जिसको कहते हैं, ये वो स्तर है जिसमें भक्त जो है निरंतर हरिनाम ले पाता है। और ये निष्ठा के लक्षण है, निष्ठा के लक्षण यही है कि अपने आप को तृण से भी अधिक नीच मानता है, वृक्ष से भी अधिक वो सहनशील होता है, सदा दूसरों को मान देते, कभी मान की इच्छा नहीं करता है। बहुत मुश्किल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में ही, जगाई बदाई हुए थे पापिश पूरी शेरे कीटे हुए थे मुही से लगिश। बोलते हैं जगाई बदाई से भी अधिक पाप हुए हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक कविता लिखने के लिए या एक ग्रंथ की रचना करने के लिए कुछ श्लोक उन्होंने रख लिख दिए, जैसे हम श्लोक कोट करते रहते हैं। वो श्लोक कोट नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। जो भाव के हृदय में है वही प्रकट हो रहा है प्यार के रूप में, श्लोक के रूप में। श्लोक कोट करना तो कोई भी कर सकता है कोट। आप याद करिए, हजारों श्लोक याद करिए, कोट करते रहिए, मुंह से निकलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी योग्यता नहीं है, बल्कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं वो योग्यता उनमें है, वही भाव उनके शब्दों में छलक रहा है। ऐसा नहीं कि कोई काव्य रचना है, पीएचडी जो है थीसिस वर्क है। तो जगह इसलिए प्रभुपाद, इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर या श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ने की ये योग्यता है। कोई पीएचडी स्कॉलर चैतन्य चरितामृत को नहीं समझ सकता। बड़े बड़े विश्वविद्यालय में चैतन्य चरितामृत का अध्ययन किया जाता है, बंगाल में, कैलकाटा में। कई पीएचडी स्कॉलर्स हैं चैतन्य चरितामृत के, जानते हैं, उज्ज्वल नीलमणि भी पढ़ाते हैं। इसे श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि एक उनके शिष्य ने बताया कि एक प्रोफेसर है वो अपने शिष्यों को उज्ज्वल नीलमणि पढ़ाता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि उज्ज्वल नीलमणि जो है ये पब्लिक के लिए नहीं है, कि कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज के लिए है, सबके लिए नहीं है। और जिसको वो पढ़ा रहा था उसमें से एक फीमेल स्टूडेंट से उस प्रोफेसर का विवाह हो गया कुछ समय के बाद, उज्ज्वल नीलमणि पढ़ाते पढ़ाते। तो क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, अधिकार। इसे ठाकुर भक्ति ने कहा है जैन धर्म में भजन रहस्य में कि जब तक अधिकार नहीं होगा हम भजन नहीं कर सकते। भजन करने के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है, बिना भजन के आप अधिकार के भजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान भगवदगीता में बता रहे हैं, ये शाम को अंतगतम पापां जनानां पुण्य कर्मणा स्वद्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। मतलब डिटर्मिनेशन के साथ कोई भजन कर पाता है, निश्चिता भजन क्रिया जिसको कहते हैं, वो तभी हो सकता है, भगवान कह रहे हैं, जब समस्त प्रकार के उसके पाप नष्ट हो चुके हैं। और इस समस्त प्रकार के पाप कब नष्ट होंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, यानी कि कूट बीज अपरारब्ध प्रारब्ध सारे प्रकार समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। किससे? शरणागति से। शरणागति जब तक नहीं होगी हम निष्ठा के सर पर आ ही नहीं सकते हैं, असंभव है ये। आप करोड़ों जन्मों तक जप करते रहे कुछ नहीं होगा। बहु जन्मे जदि करे श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। One can chant for billions of births. अगर ये क्वालिटी नहीं इंपैक्ट करेंगे हम शरणागति। इसलिए श्री भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने कहा है कि 26 जो वैष्णव के गुण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है कृष्ण ही के शरण, शरणागति। जब शरणागति होती है तो बाकी जितने भी दिव्य गुण है वैष्णव के वो सब अपने आप ही विकसित होने लगते हैं। शरणागति से प्रारब्ध नष्ट होता है, शरणागति से भक्त निष्ठा के स्तर पर पहुंचता है, शरणागति से जो है वो कीर्तनीय सदा हरि हो पाता है। और कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेंटल स्पेकुलेशन से कीर्तनीय सदा हरि के स्तर पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है। प्रारब्ध नष्ट होना होगा हमारा, प्रारब्ध ही है जो जिसको नष्ट होने में समय लग जाता है। कूट बीज अप्रारब्ध ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। जैसे पंखा जी प्रभुपा जी ने एग्जाम्पल दिया है पंखे का कि पंखे का जब पंखा जब चल रहा है तो स्विच ऑफ करते हैं तो पंखे का ब्लेड फिर भी चल रहा है, राइट। रस्सी में जब आग लगती है तो रस्सी फिर भी दिखाई देती है, राइट। जैसे कि विश्वनाथ ठाकुर एक एग्जाम्पल देते हैं कि कहा कि एक गांव में आग लग गई, किसी ने कहा, वो देखने गया, अरे गांव में कहां आग लगी, एक झोपड़ी में आग लगी। लेकिन चूंकि झोपड़ी में आग लगी है उसके आसपास जितनी झोपड़ियां सब में आग लगी है और धीरे धीरे जो है गांव जो है पिघल के राख हो जाएगा। कपड़ा फट गया है, कपड़ा थोड़ा सा फटा है लेकिन हम बोलते हैं कपड़ा फट गया है, राइट। इसी तरह से कोई साइकिल में जाता है और साइकिल चलाते चलाते फिर भी उसका थोड़ी देर पहिया चलता रहता है। तो इसलिए भागवत में भगवान कपिल देव बोल रहे हैं श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति प्रादुर्भवे क्रमः। रूप गोस्वामी भी वही बोल रहे हैं कि दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। लेकिन कई बार बोला जाता है कि भागवत में तो लिखा है तत्क्षणात् धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सदा, नहीं, सदा सद्यो हृदि अवरुध्यते कृते भी तत्क्षणात्। तत्क्षणात् तत्क्षणात् का मतलब यह है कि करोड़ों जन्मों से हम 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं और अभी 2-3 साल में अगर हम लोग इन अनर्थों से निवृत्त हो जाते हैं तो तत्क्षणात् से कम है क्या? या 10 साल में 20 साल में अगर हम लोग अनर्थों से निवृत्त हो जाएंगे तो वो क्या तत्क्षणात् नहीं है? जब करोड़ों जन्मों से हम 84 लाख योनि में भटकते रहे हैं तो तत्क्षणात् का मतलब ये है। तत्क्षणात् का मतलब ये है कि तत्क्षणात् क्यों नहीं हो रहा है? मेरे को तो 25-30 साल हो गए हरिनाम लेते, कुछ हो ही नहीं रहा। और जो करोड़ों जन्मों तक आप पाप में लगे रहे, 84 लाख योनि में भटकते रहे, उसका क्या हिसाब है? उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है इस बात को समझना कि कीर्तनीय सदार ही जो है ये स्तर पहुंचना कोई आसान नहीं है, है कि नहीं? इसने कहा कि प्रभु आप कई बार भक्ति को बहुत कठिन बना देते हैं। कठिन हम नहीं बना रहे, कठिन हमारे अनर्थ में बना रहे हैं, हमारे स्वयं के अनर्थ हैं जो हमें कठिन बना रहे हैं, कठिनाई में डाल रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है इस बातों को समझना कि कीर्तनीय सदा हरि ये साधारण सर नहीं, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी वे टू अटेन। ये बहुत आसान नहीं है इस तरह पहुंचना। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि वैष्णव की गुरु की सेवा में अत्यंत प्रयत्न करना पड़ता है इस स्तर पर पहुंचने के लिए। तो कई बातें हैं समझने के लिए। अब देखिए संकीर्तन की बात जब की जाती है, संकीर्तन को इतना जोर दिया क्यों गया है शास्त्र? सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ, सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे पूरे पृथ्वी में, बृहस्पति के अवतार, उनसे बड़ा कोई स्कॉलर नहीं था, बट थे वो मायावाद दर्शन वस्तु कर रहे थे, लेकिन वैसे तो बहुत बड़े विद्वान थे। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको कन्वर्ट किया, उनको वैष्णविज्म में लेके आया, कोई साधारण बात नहीं थी। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े विद्वान उनके पास आकर उनसे शिक्षा लिया करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने एक हफ्ते में उनको पूरा अपरास कर दिया शास्त्रार्थ में। और जब ये शास्त्रार्थ जब समाप्त होने लगा तो सर्व भट्टाचार्य ने एक प्रश्न किया था कि जो भक्ति के जितने भी अंग हैं, प्रोसेसेस हैं, आइटम्स हैं, उसमें सबसे प्रभावशाली कौन सा अंग है?
सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा, जो कि सबसे बड़े स्कॉलर थे, चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते होइले मर, प्रभु उपदेश कोयला नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु का चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ डिवोशन, कि हरि नाम का उच्चारण जो है, संकीर्तन जो है, ये क्या है, सर्वोपरि साधन है भक्ति में। 64 भक्ति के अंगों में सर्वोपरि साधन है। इसलिए चैतन्य चरितार्थ में अन्यत्र ये भी दिया गया है कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, 64 भक्ति के अंगों में नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति 64 भक्ति अंगों में श्रेष्ठ मानी गई है। और कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, इसके बाद महाशक्ति है कि नवदा भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम मिल सकता है। इट्स सो पावरफुल द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। बट तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराध नाम लोयले पाए प्रेम धन। लेकिन नवदा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। अब देखिए, विश्वनाथ चरित्र ठाकुर क्या कहते हैं, बहु वीर मिलित्वा इति कीर्तयति संकीर्तनम, बहु वीर मिलित्वा कीर्तयति इति संकीर्तनम, बहुत सारे भक्त जब मिलकर कीर्तन करते हैं भगवान का, उसको संकीर्तन कहते हैं। और रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, नाम लीला गुणादिनम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम, जब भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाओं का उच्च स्वर में जब कीर्तन किया जाता है तो उसको संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन देखिए कभी अकेले नहीं हो सकता है, संकीर्तन का मतलब है कि सम्यक रूप से भगवान के नामों का कीर्तन करना, जो भक्तों के संग में ही रहकर हो सकता है। इसे संकीर्तन का इतना महत्व बताया गया है। एक बार भक्तों ठाकुर के पास कुछ भक्त आए थे और भक्तों ने शिकायत की थी जगन्नाथ बाबा जी महाराज के पास। उन्होंने कहा कि हम बाबा जी महाराज के पास गए, हम तो सब घर छोड़कर आए हैं, वी हैव लेफ्ट अवर फैमिली यू नो और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, हम सब छोड़कर आए हैं। हमने उनको कहा कि हमें अष्टकाली लीला स्मरण के बारे में आप कुछ शिक्षा दीजिए। तो बाबा जी महाराज ने कहा कि उन्होंने कहा है कि हम जो है बगीचा संभालें, पौधे उगाएं, फल फूल उगाएं, तुलसी महारानी की सेवा करें, बिगड़े की सेवा करें, हम तो बड़ी आशा लेके आए, आप कृपा करके हमको बोलिए ना, हमें सब सिखाए। तो भक्तों ठाकुर कहते हैं कि बाबा जी महाराज ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, अगर विग्रह की सेवा में आप लगेंगे, तुलसी महारानी की सेवा में लगेंगे, विग्रह की सेवा में लगेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके अनर्थ दूर होते जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और इस अवस्था में ही आप अष्टकाली लीला का स्मरण करने लगेंगे, जिसके लिए आपके पास अधिकार नहीं है, तो आपके अनर्थ केवल बढ़ेंगे। क्योंकि इस स्तर पर पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हमें संकीर्तन में भाव ले, संकीर्तन का प्रभाव सबसे। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिखा है कि हमारे अपने जप से 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली है नाम संकीर्तन। अब कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी, नाम संकीर्तन का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, नाम संकीर्तन का मतलब जो है हम जो सेवाएं कर रहे हैं सब संकीर्तन ही है। अब कहने के लिए हम कुछ भी कह ले, प्रसाद ले रहे हैं वो भी संकीर्तन है, विश्राम कर रहे हैं वो भी संकीर्तन है, मंदिर की सफाई कर रहे हैं वो भी संकीर्तन है, सब संकीर्तन है। लेकिन जो हरिनाम है वो केवल संकीर्तन नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग भाग नहीं लेते। आप समझ रहे बात, क्योंकि हमें अपने आप को जस्टिफाई करना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसलिए नाम संकीर्तन छोड़ के बाकी सबको संकीर्तन बताते। लेकिन राजीव गोस्वामी का मत यह है कि संकीर्तन का मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली विशेष रूप से नाम संकीर्तन बोला है, नाम संकीर्तन के लिए बोला। इसलिए भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी क्या कहते हैं सुनिए, श्री नाम संकीर्तन इज द बेस्ट साधना, इफ अदर साधना हेल्प अस इन कृष्ण संकीर्तन देन दे डिजर्व टू बी कॉल्ड साधना, अदरवाइज दे आर सिंपल इंपेडिमेंट्स टू साधना। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन इज द एम्परर ऑफ साधना, इट इज द ओनली इनफेलिबल साधना केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अस टू सिद्धि। जैसे चैतन्य भागवत में एक जगह महाप्रभु कुलिया ग्राम में ब्राह्मणों को बोल रहे हैं, या होए थे सर्व सिद्धि होए वे सवार, सर्व क्षण बल इति विदेन है यार। चैतन्य महापुरुष कह रहे हैं कि इससे सारी सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है. इट्स ओनली इनफेलिबल साधना केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अस टू सिद्धि. ऑल इन कलयुगा अदर लिम्स ऑफ भक्ति शुड बी परफॉर्म, दे शुड बी अकंपनीड बाय भक्ति डिनोटेड बाय कृष्ण कीर्तन. इसका मतलब यह भी नहीं है कि संकीर्तन क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है हम मंदिर बंद करते हैं, मंदिर पर ताला लगा दें और 9 बजे उठ के आए हमारे लिए संकीर्तन कर रहे हैं. इसका मतलब यह भी नहीं है कि भागवत की कक्षा ना बैठे और संकीर्तन में लगे हों. इसका अर्थ यह नहीं कि मंदिर गंदा पड़ा हुआ है कि संकीर्तन श्रेष्ठ साधन है, हम तो हरिनाम में जाएंगे मंदिर की सफाई और कोई कर रहे हैं. इसका अर्थ यह है कि जब मंदिर की जब सफाई कर रहे हैं तो साथ में संकीर्तन होना चाहिए. इसका अर्थ यह है जब भगवान के लिए भोग बना रहे हैं साथ में संकीर्तन होना चाहिए. ऐसा मत ऐसा भक्त जीव गोस्वामी का भक्तों ठाकुर ने भी जय धर्म में लिखा है कि ऑल द लिम्स ऑफ भक्ति मस्ट बी अकंपनीड बाय संकीर्तन. कुकिंग करते हुए भगवान के नामों का उच्चारण होना चाहिए या संकीर्तन साथ में होना चाहिए, या फिर हम डीडीज का ड्रेसिंग कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, उस समय संकीर्तन होना चाहिए. मंदिर की जब सफाई कर रहे हैं, इसलिए गुंडीचा मंदिर में आज हम देख रहे हैं महाप्रभु जब मंदिर मार्जन कर रहे हैं भक्तों के साथ, सब लोग हरिनाम ले रहे हैं, कोई चुप नहीं बैठा, सब कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं. तो संकीर्तन हर जगह आवश्यक है. बिना संकीर्तन के उसका लाभ जैसे हमें बता रहे थे एक बार गदाम के हमारे जो महाराज हैं अमेरिका में दानवीर महाराज, इस वाले दानवीर गोस्वामी महाराज, महाराज जो है न्यू भक्ता प्रोग्राम के इंचार्ज लॉस एंजलिस टेम्पल. तो एक और किसी महाराज ने बताया जो उनके अंडर थे उनके ट्रेनिंग टीम में थे, तो बताते थे कि महाराज हमें बोलते थे, हम जब भी कूड़ा उठा के लेके जाते थे और पीछे से वो आवाज लगाते थे, बोलते सिर्फ कूड़ा ना उठाओ साथ में हरिनाम भी लो, यानी कि टॉयलेट की सफाई भी अगर करो तो साथ में क्या करो संकीर्तन, तब जो है उसका इतना लाभ मिलेगा कि इसके हम अंदाजा नहीं लगा सकते. हमारी समस्या क्या है कि कई साल कई वर्ष बीत जाते हैं, हम प्रोसेस को ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते. प्रोसेस जब ठीक से एप्लीकेशन प्रोसेस का नहीं होगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट भी जो है डिले हो जाएगा. इसलिए इसकी आदत ट्रेनिंग जो है डे वन से हमें देना चाहिए भक्तों को कि आप कुछ भी करें साथ में हरिनाम लेते रहें. इसे कई बार हम देखते हैं कई नए भक्त, हाँ हमें बड़े मंदिर में कुछ नए भक्तों को इस तरह से ट्रेन किया है, इवन जब वॉशरूम जाते हैं तो वो महामंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, हालांकि गायत्री मंत्र तो नहीं कर सकते हैं और मंत्र का उच्चारण नहीं कर, हरिनाम के लिए कोई नियम काल नहीं है, तो जब वो वॉशरूम जाते हैं तो साथ में वो महामंत्र बोलते रहते हैं. तो इस तरह का ट्रेनिंग डे वन से हमें दिया जाता है कि हर लिम्ब के साथ साथ हरिनाम लेना आवश्यक है, तो उसकी आदत पड़ जाएगी. देखिए सारा ट्रेनिंग के ऊपर है, हमारे ट्रेनिंग के ऊपर है कितना अच्छा प्रशिक्षण देते हैं भक्तों को, उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह हर परिस्थिति में नाम का उच्चारण किया जाए. तो इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बात श्री जीव गोस्वामी, और जीव गोस्वामी यहां तक बता रहे हैं भक्ति संदर्भ में, अगर कोई स्मरण की अवस्था में भी पहुंच जाता है, यानी कि आसक्ति के स्तर पर भगवान की लीलाओं का स्मरण होता है स्वाभाविक रूप से, तो उस अवस्था में भी जीव गोस्वामी कहते हैं कि संकीर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, उस अवस्था में भी संकीर्तन का परित्याग नहीं करना चाहिए. लेकिन हम कई बार होता है कि संकीर्तन का त्याग बहुत जल्दी कर देते हैं कि हमारे पास बहुत सारी सेवाएं हैं, हमें बहुत सारे सेमिनार दे रहे हैं, बहुत सारे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अभी कई मीटिंग्स अटेंड हमें करनी है, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, और सिर्फ संकीर्तन के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब के लिए हमारे पास समय है, तो हमारा फिर जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो हो जाए. प्रभुपाद ने एक जगह बहुत अच्छी बात बताई है, दिस चैंटिंग मस्ट गो ऑन इंस्टेड ऑफ मीटिंग्स रेजोल्यूशंस रेवोल्यूशंस डेवोल्यूशंस एंड देन नो सोल्यूशन देयर शुड बी चैंटिंग. क्या बोला प्रभुपाद ने, इंस्टेड चैंटिंग शुड गो ऑन इंस्टेड ऑफ मीटिंग्स resolutions, revolutions, devolutions, and then no solution, there should be chanting. यानी कि chanting cannot be given up. Just because हम लोग बहुत बिजी हैं, let us give up chanting. हरी नाम में जाना आवश्यक नहीं है. Let us stop book distribution. ये सब पुराना हो गया है क्योंकि अब तो सब कुछ सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, ई बुक है, सबके पास स्मार्टफोन है, सब वेदा बेस है, क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन की क्या आवश्यकता है. वी आर नॉट वेरी एडवांस स्पिरिचुअली, दिस इज युक्त वैराग्य. तो युक्त वैराग्य तो ठीक है, लेकिन फिर उसको शुद्धिकरण नहीं हो पाया, उस तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाया. सो द रिजल्ट्स गेट डिले, रिजल्ट्स गेट डिले, हमारे जो रिजल्ट हमें जो मिलने चाहिए उसमें बहुत डिले हो जाता है क्योंकि हम प्रोसेस को पाते नहीं ठीक से. in the name of our preaching, in the name of our sevas, in the name of meetings, in the name of confusions, जो भी हो. तो जो प्रोसेस हमें दिया कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन, तो कली काल का धर्म ही है हरि नाम संकीर्तन, और उसी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो बचा ही क्या है. इसे एक जगह हम लोग पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी के समय में 1969, दो चिट्ठियां हैं इसमें. रिगार्डिंग योर क्वेश्चन अबाउट संकीर्तन पार्टी, I think you should try to always have Sankirtan going on. All other things are subsidiary. Letter to Sapsur Maharaj, 1969. Christianity is our life and soul. We must arrange our program now so that there will be as much chanting on the streets and at college engagements as possible. On May 12th, we had a very successful engagement at Ohio State University, and over 1,000 boys and girls were chanting and dancing along with us. So this policy should be continued as far as possible. Ek letter aur hai, bahut acha. I have received a letter from Brahmananda also that you are finding some difficulty in keeping pace regularly with the routine work. My advice to you under the circumstances is that at least for 1 hour, you must all go to have Sankirtan outside, on the streets, on the park. Dekhiye, ab aapse question poochte hain. Maan liye daily 50 brahmacharis ya 50 devotees और कुछ आपके कंग्रीगेशन के डिवोटी सब मिलकर डेली हरिनाम में जाए, पर जाए बाकी हर स्ट्रीट में हर कॉलोनी में हरिनाम करें डेली, उससे ज्यादा प्रीचिंग ज्यादा होगा, या हफ्ते में एक दिन कोई प्रोग्राम करते हैं उससे ज्यादा प्रीचिंग ज्यादा होगा? अब बताइए. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. हरिनाम से जितना प्रीचिंग जो एक्सेलरेट होता है और किसी आइडिया से किसी सिस्टम से नहीं होगा. आप ले लीजिए, आप इस बात को ग्रांटेड ले लीजिए. इट्स अ फैक्ट. 50 devotees have to go every day for Harinam. बस आप जाके देखिए पंजाब के हर गली हर कूचे में आप हरिनाम करके देखिए, यहां पर पांव रखने की जगह नहीं होगी, इतने भक्त बनेंगे आपके. वाई प्रभुपाद के टाइम में सारे टेम्पल भरे हुए थे अमेरिका में, उसका केवल एक ही रीजन है, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रेस वाज गिवन ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड हरिनाम. एक बार प्रभुपाद डिसिपल उस दिन बताया था, नेम वॉज सुरेश्वर प्रभु, जो यहां पर आपके लिए सेमिनार भी कर गए प्रभुपाद जी के पास. So he was explaining in Bhagavatam class कि एक प्रभुपाद ने एक डिसाइपल को बोला था कि आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट हरिनाम पार्टी. अमेरिका में किसी एक टेम्पल में थे, तो वो डिवोटी की इच्छा नहीं हो रही थी हरिनाम पार्टी शुरू करने की, और वो डिवोटी फिर दूसरे टेम्पल में चले गए प्रभुपाद से पैसे के लिए. तो प्रभुपाद ट्रैवलिंग में लगे रहते थे, तो प्रभुपाद उस टेम्पल में पहुंचे जहां वो डिवोटी गया था. तो प्रभुपाद को देख के वो घबरा गया, क्योंकि टेम्पल इतना बड़ा नहीं था कि छुपने के लिए. तो कॉरिडोर में मतलब पैसेज में वहां वो खड़ा हुआ था, सामने से प्रभुपाद आ रहे थे, टेम्पल में एंटर कर रहे थे, और ये डिवोटी ने क्या किया, दीवार के सहारे वो अपने को छुपा लिया उसने, यानी कि दीवार की तरफ अपना चेहरा रख के और ऐसे छुप गया वो. प्रभुपाद पीछे से आए, प्रभुपाद समझ गए कौन खड़ा है. तो प्रभुपाद ने कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आई टोल्ड यू टू स्टार्ट हरिनाम पार्टी, आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस, गो बैक एंड स्टार्ट द हरिनाम पार्टी. तो प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी हरिनाम के लिए. इस समय उस समय राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के साथ जो विश्वजान स्वामी और कई हमारे जो उस समय लीडिंग व्यासा की प्रभु और कई डिवोटी से जो रेगुलर हरिनाम में डेली जाया करते थे. आगे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, क्या बोल रहे हैं, दैट इज योर लाइफ सोल फर्स्ट बिजनेस. द नेक्स्ट बिजनेस इज कंप्लीटिंग द चैंटिंग ऑफ 16 राउंड्स एवरी डे. द नेक्स्ट बिजनेस इज योर एडिटिंग. And if you find extra time, then you can attend the temple ceremonies. Otherwise, you can stop these activities. But outdoor kirtan, your editing work and chanting 16 rounds must be done. Outdoor kirtan must be done even at the cost of suspending all editorial work. This is your first and foremost business. Temple worship is not so important. If need be, the whole temple can be locked, but the outdoor kirtan cannot be stopped. This is Mahaprabhu's movement. Our movement is on the street, not in the temple hall. This is there because we cannot chant always the holy name, so this is also required. Panchratri Vidhi must go side by side. Panchratri Vidhi simultaneously hona chahiye Bhagavad Vidhi ke saath. That is required. Sari sevai honi chahiye. But this cannot be given up in any circumstance. Sankirtan is so important. Sankirtan ke importance agar aap samajh gaye, aapka itna preaching ho jayega, log gharon se nikal nikal ke seva karenge aap. Aap karke dekhiye. Sirf is baat pe faith hona chahiye bas. ऐसे कि नौवां नाम अपराध क्या है, हरिनाम की इतनी अगाध महिमा करने सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, इसका एक और मीनिंग है, हरिनाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी संकीर्तन में न जाना, इसका एक अर्थ यह भी है, हरिनाम की इतनी महिमा का श्रवण करने पर भी क्या है संकीर्तन में नहीं जाना, क्योंकि हमें लगता है कि वाई शुड बी गो, हमारा क्या वहां पर रोल है, हमें क्या करना होगा, ना हमें कीर्तन करना आता है, ना हमें करताल बजाना आता है, ना मृदंग बजाना आता है, व्हाट इज यूज ऑफ वॉकिंग। अच्छा वॉकिंग होगा तो कम से कम आपका जो प्रसाद अपने पाया वो तो डाइजेस्ट होगा कम से कम, क्यों फायदा नहीं होगा बताइए। श्रील गौरवेश महाराज एक मैं सुन रहा था एक लेक्चर के बाद बोल रहे हैं द कार्तिक मंथ इज कमिंग एवरी डे मॉर्निंग वी विल ऑल गो फॉर हरिनाम एट 5:30 PM वी विल लीव फ्रॉम द टेम्पल। तो महाराज ऐसे कुछ बता रहे हैं यू काम, किसी डिवोटी से पूछ रहे हैं महाराज तो कुछ बोल नहीं रहा, तो यू पीपल आर लेजी पागल कहते, यू आर लेजी पीपल बोलते वी डोंट वांट टू गो आउट फॉर हरिनाम। फिर महाराज कहते हैं दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग ऑल दीज डिजीजेस, अगर आप संकीर्तन में डेली जाओगे तो आपको बीमारी नहीं लगेगी, सारी बीमारी भाग जाएगी। इसलिए प्रभुपाद ने एक लेटर में लिखा था इफ यू आर एक्टिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस यू कैन डाइजेस्ट इवन स्टोन्स। प्रभुपाद ने एक लेटर में लिखा इफ यू आर एक्टिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस यू कैन डाइजेस्ट इवन स्टोन्स। और संकीर्तन में नहीं लगेंगे, बुरा ना माने, हम वो कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं जिसमें तपस्या होती है, ये है असली सत्य। This is the harsh truth. In the name of seminar and presentation, we may give so many excuses, but the fact is, because we don't want to do austerity, therefore we don't want to go outside for Hrinam, क्योंकि वहाँ कष्ट है, धुआं खाना पड़ेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों की गालियां सुननी पड़ेगी, कौन इतना कष्ट उठाएगा जब आराम से एयर कंडीशन रूम में आराम से बैठ कर सेमिनार सुनने का मौका मिल रहा है। We can hear the glories of the holy name, we can talk about the glories of the holy name, but we don't want to go out for Hrinam. इसका मतलब जो भी हमने सुना और कहा दिस ऑल थियोरेटिकल, और भक्ति इज नॉट थियोरेटिकल, भक्ति इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन यही है जब थ्योरी को अप्लाई किया जाता है, और स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का मतलब यह है जब फिलॉसफी को सुनने के बाद उसको अप्लाई करते हैं हम। तो इसलिए चैंटिंग मस्ट प्रभुपाद बोल रहे थे चैंटिंग मस्ट गो इंस्टेड ऑफ रीडिंग रेजोल्यूशंस रेजोल्यूशन डिसोल्यूशन जो भी है डिवोल्यूशन एंड देन नो सोल्यूशन जस्ट शुड बी चैंटिंग। तो प्रॉपर इसलिए बहुत स्ट्रेस किया हरिनाम के ऊपर, और इसलिए हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए इतने साल हम संकीर्तन कर रहे हैं इसका कोई लाभ तो हो नहीं, लाभ होगा, वी हैव टू वेट, वी हैव टू नीड टू हैव अ पेशेंस। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं एंथुसियाज्म पेशेंस डिटर्मिनेशन उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतोवृत्ति षड्भी भक्ति प्रसिद्धति। धीरे धीरे देखिए आप कितना लाभ मिलेगा, संकीर्तन आप करें करके देखिए, जितने भी मुटमुटाव हैं भक्तों में, आप अभी जितनी भी समस्याएं चल रही हैं रिलेशनशिप में, जो डेफिशिएंसी है इनएफिशिएंसी है वो सब का सब खत्म हो जाए। आप से संकीर्तन भाग लेके देखिए आप डिफरेंस देखिए, एक महीना आप करके देखिए संकीर्तन डेली जाके, यू विल सी द डिफरेंस इन योर कॉन्शियसनेस। आप लिख के ले लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो, डॉक्यूमेंट कर लीजिए नोटरी पब्लिक से, थपा लगा लीजिए, इससे पूछिए ऋषि कुमार को से आपको लीगलाइज कर देंगे। He knows all the legal things. आप करके देखिए एक बार, एक महीने के लिए सर आप डेली संकीर्तन में जाइए। हिजोले महाविष्णु महाराज बता रहे थे लंदन में जब उन्होंने ज्वाइन किया था 1972 में, इतनी बुक्स पब्लिश नहीं हुई थी, तो 10 बजे सुबह वो लोग हरिनाम में निकलते थे। आज भी लंदन में डेली हरिनाम होता है, जानते हैं लंदन टेम्पल से डेली हरिनाम पार्टी जाती है। 10 बजे गो आउट, 1 बजे वापस आते थे, 1 से 2 उनकी क्लास होती थी, और 2 बजे फिर निकल जाते थे, 2 बजे जाते थे, फिर देन यू शुड कम बिफोर संध्या। तो 6 आवर्स एवरी डे हरिनाम। बोलते क्या हुआ हमारे गुरु महाराज आए, हमारे कहते हैं वो हरिनाम में जाते हैं क्या? मैं कहा हमारे जाते हैं हफ्ते में एक बार, शुरू किया है। कितने देर के लिए जाते हैं आप लोग? 2-3 घंटे के लिए जाते हैं। 2-3 घंटा, व्हाट इज दिस हरिनाम? बोले यू शुड गो एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स। सो एक्चुअली ए फैक्ट है, क्योंकि प्रॉपर के टाइम में लोग जाते थे होल डे फॉर हरिनाम। हैवी प्यूरिफिकेशन इज देयर, हैवी प्यूरिफिकेशन। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चातुर्मास व्रत कार्तिक व्रत ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आप संकीर्तन में जाइए हरिनाम में, यू विल गेट द हाईएस्ट बेनिफिट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अंदर कब्रों में रूम्स में कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है, एक दूसरों की बुराई और एक दूसरों की कमियां नजर आएंगे हमें, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। जितने भी हमारे प्रॉब्लम है मैनेजमेंट से रिलेटेड है, अनर्थास है वगैरह वगैरह है, वो इसलिए होता है, हमारे पास बहुत समय होता है इनका चिंतन करने के लिए। जब आप व्यस्त होंगे संकीर्तन में तो आप भूल ही जाएंगे आपका कोई अनर्थ भी था। तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् अथवा भजन क्रिया तथा अनुवृत्ति स्यात्। तो भजन क्रिया जो है, जो कलयुग में जो प्रोसेस है, उस भजन क्रिया को एक्सेप्ट करना है। वी कैन नॉट कॉन्कोक्ट न्यू भजन क्रिया सिस्टम विद इन इस्कॉन एटलीस्ट, क्योंकि प्रभुपाल ने ये जो मूवमेंट है इसका नाम दिया है दिस इज द हरे कृष्णा मूवमेंट। देयर हैज टू बी द मूवमेंट। पानी जब एक जगह रुक जाता है तो वो सड़ जाता है, उसको हम लोग मिनरल वाटर कहते हैं, जिसको हम बड़े खुशी से पीते हैं। बोतल खोल के खोलते बाद शुद्ध ताजा जल है। अरे कितने दिन से बोतल में बंद है वो पानी। शुद्ध ताजा जल वो होता है जो नदी की तरह बहता रहता है, वो होता है। आप जाके देखिए पहाड़ों में शुद्ध ताजा जल का मतलब क्या होता है, हिमालय में जाके देखिए जहां नदी बह रही है वो पानी पी के देखिए आप आरों का पानी भूल जाएंगे। वो है असली पानी, वो असली शुद्ध ताजा जल है। इसी तरह से कृष्ण भावना में हमेशा अगर हम चाहते हैं कि हम जगे रहें, उठे रहें, जीवित रहें, प्राण अचेतार सही होते प्रचार, तो ये है सबसे उत्तम संकीर्तन में भावना। वेरी वेरी पावरफुल प्रोसेस हरिनाम संकीर्तन। इसलिए हम लोग देखिए, अब देखिए अजामिल की कथा में ये देखिए, अजामिल का देखिए क्या, उसका देखिए उसकी हालत क्या थी। वो वैश्य की संगति में फंस गया, कई संतानें भी उत्पन्न हो गई, लेकिन एक बच्चे का नाम क्योंकि नारायण रख दिया, उसको कितना लाभ मिल गया, सारे पाप खत्म हो गए, सारे पाप नष्ट हो गए। देखिए सो पावरफुल इज द होली नेम। ये हरिनाम में इतना प्रभाव है, हरिनाम की इतनी शक्ति है। और दुर्भाग्य की बात है उसी हरिनाम का उच्चारण करते हुए हमें बड़ी नींद आती है, सो जाते हैं हम लोग। अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं संसार में, ना मेटेरियली कुछ कर सकते हैं ना स्पिरिचुअली कर सकते हैं। इसलिए आप बाहर जाके देखिए, लेबर्स यूनियन है, ट्रेडर्स एसोसिएशन है, कूली का यूनियन है, बंगाल में टैक्सी यूनियन है, यूनियन ही यूनियन है हर जगह। अगर आप जाके देखो हर जगह यूनियन होगा, हर जगह एसोसिएशन होगा, क्योंकि एसोसिएशन का स्ट्रेंथ है कलयुग में। अकेले कुछ नहीं हम कर सकते हैं। इसी तरह से बहुबीर मिलत्वा कीर्तयति इति संकीर्तनम्। जब बहुत सारे भक्त मिलकर जप करते हैं टेम्पल हॉल में तो वो भी संकीर्तन हो जाता है। बहुत सारे भक्त मिलकर जप करते हैं तो क्या हो जाता है, वो जब संकीर्तन में बन जाता है, संकीर्तन में वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अकेले जब जप करेंगे अलग से रूम में तो वो संकीर्तन नहीं है, यानी कि गुणों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। वहां पे विषयों का चिंतन आप करके देख लीजिए। आप भक्तों के साथ बैठ के जप करिए और अलग से कमरे में बैठ के जप करिए, आप करके देख लीजिए। एक माला टेम्पल हॉल में जप करके देखिए भक्तों के साथ, और एक माला अपने रूम में जप करके देखिए जहां कोई भक्त नहीं, आपको जमीन आसमान का अंतर पता चले। क्योंकि भक्त हमारी सहायता करेंगे गिरने से, सोने से। तो ये जो ड्राइनेस है, डिटर्मिनेशन हमें आता है केवल भक्तों के समय। इसलिए हम लोग पूर्ववर्ती आचार्यों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, ठाकुर भक्ति विनोद के बारे में पढ़ते हैं, या हनुमाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रत्येक दिन 300,000 नाम का उच्चारण करते थे, 192 राउंड्स लेते थे। इनके जीवन चरित्र को जब पढ़ा जाता है, इनके बारे में जो श्रवण किया जाता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ हद तक जप कर सके। 192 वाला नहीं तो कम से कम 16 वाला तो ध्यान पूर्वक जप करें। इसलिए राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में अगर प्रलय भी आ जाए तो अपने जप नहीं छोड़ना चाहिए। इसको कहते हैं ध्यान पूर्वक जप करना, अटेंटिव चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। ठाकुर भगवान का हरिनाम चिंतामन ने लिखा है कि इन अटेंटिव चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दी अनर्थस। और सबसे बड़ा अर्थ इस कलयुग का यही है कि हम लोग हरिनाम को छोड़ के, शास्त्र को छोड़ के हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसी को सब कुछ मान रहे हैं। बुरा मत मान, हाथ में हमारे पास स्मार्टफोन है, हमें लगता है कि हमें स्वर्ग लोक का सुख मिल गया है। यही है क्या चिंतामणि, यह है स्पर्शमणि। मेरे हाथ में स्पर्शमणि है, टच स्टोन है स्मार्टफोन। इज नथिंग बट द टच स्टोन ऑफ कलयुग। स्मार्टफोन इज नथिंग बट चिंतामणि ऑफ कलयुग। उसको छूते ही जाए कितना आनंद आता है, सब भूल जाते हैं, हरिनाम भूल जाते हैं, शास्त्र भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। या फेसबुक पे केवल फेसेस देखते रहते हैं हम लोग, वही सोचते हैं हमारा भजन है। सही मोरा संपदा, सही मेरा भजन पूजन, सही मोरा भजन पूजन। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे लिख रहे श्री गुरु गोस्वामी जी, सही मोरा भजन पूजन, सही मोरा संपदा, दिस इज माई वेल्थ, दिस इज माई भजन, दिस इज माई पूजन, टू ऑलवेज बी ऑन द स्मार्टफोन। वाह क्या बात। और उसी को हम भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। युक्त वैराग के नाम पर हम अपने आप को धोखा देते हैं। दिस इज अ चीटिंग, दिस इज बहुत बड़ा चीटिंग है। इसलिए जो वास्तव में जो भजन है उसको छोड़ के बाकी सबको भजन मानना, ये 100% माया है। प्लीज डोंट माइंड। तो इसलिए हम लोग जितना हम लोग आधुनिक यंत्र तंत्रों में फंसा रहेंगे हमसे भजन नहीं होने वाला है, ये याद रखिएगा, ये गारंटी है। इसलिए बहुत मुश्किल होता है हमारा, हम लोग मेंटली इतने डिस्टर्ब होते हैं कलयुग में, क्योंकि देखिए इन सबका रेडिएशन इतना हैवी होता है, फोन्स वगैरह रखते हैं जब पास में, इतना रेडिएशन इतना हैवी होता है, ये आपके मन को इतना उत्तेजित करता है, इंद्रियों को इतना उत्तेजित करता है कि आप बैठे बैठे भी जो है पूरे विश्व का दर्शन करते हैं, पूरा घुमा देता है। इसलिए हाथ में अगर फोन रख रहे हैं ये बहुत बड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, आपका जब नहीं होगा और आपको मजबूर कर देगा कि आप कुछ ना कुछ में देखें। माया का इस कलयुग में सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट यही है। हरदास ठाकुर के सामने तो वैश्या को भेजा गया था रामचंद्र खान के द्वारा, या साक्षात माया देवी आई थी, उसकी आवश्यकता नहीं है कलयुग में, यही बहुत है, यही पर्याप्त है। सर्वत्र विश्व व्याप और पूरे सृष्टि का दर्शन आप स्मार्टफोन में कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्रीचिंग कर रहे हैं। व्हाट प्रीचिंग कर रहे हैं? पहले प्रीचिंग नहीं होता था क्या? श्रील प्रभुपाद ने 11 वर्ष में 12 वर्ष के अंदर 108 मंदिर बना दिए पूरे विश्व भर में बिना मोबाइल फोन के। कैसे किया उन्होंने बताइए? हाउ डिड यू डू? या फिर हमारा ये तो खैर बोल सकते हैं प्रभुपाद तो महाभागवत है, ठीक है, यह हमारा ग्लोरी ऑफ इंडिया वैदिक कल्चर सेंटर जिसका इनॉग्रेशन 98 में हुआ, This temple was inaugurated without mobile phone. It's a fact. तो इसका मतलब यह है, इसका निश्चय यह निकलता है कि जो चीजों की आवश्यकता नहीं है उसको हमने पैदा कर लिया है और इसी को ही अनर्थ कहते हैं। अनर्थ का मतलब यह होता है जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है, unwanted things। जितना लाइफ हमारा सिंपल होगा उतना अधिक भजन होगा, जितना हमारा लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना भजन नहीं होगा, संकीर्तन नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि हमें लगेगा शॉर्टकट में भक्ति मिल रही है, हमें स्मार्टफोन से सारा कृष्ण प्रेम मिल जाता है तो संकीर्तन में जाने की क्या आवश्यकता है? वी थिंक लाइक दैट। ये मजबूर कर देगा आपको सोचने में इस तरह से। तो इसलिए सोफिस्टिकेटेड कॉन्शियसनेस या कॉम्प्लिकेटेड कॉन्शियसनेस को छोड़ के हृदय में जब सिंप्लिसिटी सरलता जब आएगी तब संकीर्तन हो पाएगा, तब कीर्तनिया सदाहरी हो पाएगा, अन्यथा हो नहीं सकता है। तो इसलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन शास्त्रों को कब पढ़ेंगे हम लोग? ये भागवतम है, ये भक्ति रसाम सिंधु है, ये जो ग्रंथ दिए हमारे आचार्य ने श्रील प्रभुपाद जी के, कई ग्रंथ हैं पढ़ने के लिए, इन ग्रंथों का गहन अध्ययन नहीं होगा, इसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, कब करने वाले हम ये सब? वेल, जब बूढ़े हो जाएंगे, वृद्धावस्था में तो हमें बहाना मिल ही जाएगा कि हम चल नहीं सकते हैं, इस संकीर्तन में नहीं जा सकते हैं, बैठ तो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक, और इसलिए यहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं और इवन यहां पे भी इस परपोर्ट में लिख रहे हैं, इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है क्यों ना हम जोर जोर से तथा स्पष्ट रूप से भगवान नाम का कीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों ठाकुर भी जब स्वरूपगंज में थे अपने स्वानंद सुखद कुंज में भजन कुटीर में, तो बाहर लोग खड़े होते, सुबह सुबह उनको आवाज आती थी भक्तों ठाकुर के नाम उच्चारण की, जोर जोर से जप करते थे और दूर दूर तक उनके नामों का उच्चारण सुनाया जाता था। याद है कि कलकत्ता में जब भक्ति भवन की स्थापना की, आखिरी जो 8 साल है श्रील भक्तों ठाकुर निर्जन भजन में लगे 1908 से शायद 6 साल या 7 साल 1908 से 1914 वो अपने कमरे में ही रहे, भीतर बंद किया और दरवाजा उन्होंने इतना मोटा बनाया, सो थिक डोर, जानते क्यों? ताकि कोई बाहर की आवाज ना, सो एब्सॉर्ब्ड इन चैटिंग। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं उन्होंने सारा ये निष्कर्ष यही दिया है, वो है संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए जब तक स्वस्थ शरीर है हमारा, हेल्दी बॉडी माइंड सब कुछ है, इसे महाराज को पूछे के लिए बोल रहे कुंद नाला सूत्र में, कृष्णा तदीय पद पंकज पंचरांतम अद्वैवमे विशद मानस राज हंसा प्राण प्रयाण सफे समय कफवाद वित्त कंठा अवरधोन विधो स्वर्णम कुतस्थे। अभी मैं स्वस्थ हुआ, I have experience with the throat. तो जीवन के अंतकाल में क्या है, मुझे अंतकाल में नहीं, अभी ही इसी काल में कुछ एक्सपीरियंस हो गए हैं कि आप अगर आपकी वाणी नहीं है, आपकी जीवा कार्य भी ठीक से कर नहीं रही है, सो यू आर लॉक्ड अप, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए महाराज कुरुक्षेत्र बोल रहे हैं कि जीवन के अंतकाल में मेरा जो कंठ है कफ वात और पित्त से भर जाएगा, इट विल वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चैंट योर होली नेम। अभी मैं स्वस्थ हूं, अपने मन की तुलना उनसे हंस से की है, हंस बड़ा चंचल होता है, और भगवान के चरणों की तुलना कमल से की है। हंस क्या करता है, कमल के इर्द गिर्द घूमता है और नाल में अपने गर्दन को जकड़ लेता है। तो बोल रहे मेरा जो हंस रूपी मन है, मेरी इच्छा ये कि मेरा जो हंस रूपी मन है आपके चरण कमलों में इसको जकड़ लीजिए, आप अभी जकड़ लीजिए क्योंकि मैं अभी स्वस्थ हूं, मेरे लिए पॉसिबल है ये करना। तो एक अन्य स्थान पे वायु पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान इसी श्लोक का उत्तर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिसने जीवन भर श्रवण कीर्तन किया है और किसी कारणवश स्वास्थ्य ठीक होने के कारण या रोग के कारण जीवन के अंत काल में अगर वो श्रवण कीर्तन नहीं कर पाता, अगर पूरे जीवन भर उसने किया है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको शक्ति प्रदान करूंगा जिसके द्वारा मेरा स्मरण कर पाए। इसी को कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम् का मतलब यह है जिसे जीवन भर क्या किया है, अनन्य चिंतयन्तो मां, जीवन भर में ध्यान पूर्वक जप किया है और उच्चारण किया है जोर जोर से हरिनाम का, इस प्रोसेस को बड़ी गंभीरता से लिया है, अगर जीवन के अंतकाल में जो कमी पैशी भी रह जाएगी उस कमी को पूरा करेंगे भगवान। माधुरी गाथा में विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने यही लिखा है, विश्वनाथ ठाकुर यह लिखते हैं कि रोग के कारण या किसी ऐसी परिस्थिति के कारण जीवन के अंतकाल में आप श्रवण कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, जो भक्ति आपने की है उस भक्ति के प्रभाव से आपको पूरा लाभ मिल जाएगा, लेकिन जीवन भर करना पड़ेगा ना। प्रभुपाद कहते हैं आखिरी 3 साल मत करिएगा, प्रभुपाद लेक्चर बोल रहे कि आखिरी 3 साल मत करो सर, पूरे जीवन भर जब करेंगे तब हम कुछ आशा कर सकते हैं कुछ होगा। जीवन भर ही गंभीरता नहीं रही श्रवण कीर्तन में, विशेष रूप से जप में और संकीर्तन में, तो फिर जीवन के अंत काल में हम क्या सोच रहे हैं, लॉटरी टिकट मिलेगा हमें। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि अजामिल की कथा जो है ये एक्सेप्शनल केस है, अजामिल के साथ जो हुआ है, ऐसा नहीं कि हम जीवन भर पाप कर लेंगे और अंत में जो है हरिनाम ले लेंगे, ये सोचना भी नाम अपराध हो जाए। तो बहुत हमें गंभीरता से भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए जो एक पावरफुल प्रोसेस है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने बताया है साधु संगे भागवत, साधु संगे क्या है, साधु संगे नाम संकीर्तन नहीं, साधु संगे क्या है, साधु संगे भागवत श्रवण नाम संकीर्तन, फिर क्या श्री मूर्ति सेवा श्रद्धाया सेवा, ये पांचांग भक्ति के बारे में बताया है श्री रूप गोस्वामी ने कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ डिवोशन सॉरी। और पांचांग भक्ति में एकांग भक्ति जिसको कहते हैं वो है संकीर्तन। संकीर्तन जब हम करते हैं, भक्तों ठाकुर ने लिखा है जैन धर्म में बाकी जितने 63 लिम्स है वो आके वहां पे लग जाते हैं सेवा में, सो पावरफुल, पर अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस, पूरा एडवांटेज नहीं लेते। एटलीस्ट हमारे जो और भक्त बोल सकते हैं ये सेवा वो सेवा, हमारे जो ट्रेनिंग में जो बाहर भक्त हैं उनको डेली जाना चाहिए हरिनाम, दैट शुड बी मेड पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। अभी वहां पर हमने किया है कि डेली जो है क्या करते हैं, इवन नॉट ओनली पीपीटी में प्रसाद के बाद जिन भक्तों के बाद कोई एक्टिव सेवा नहीं है या 1 या 2 बजे के बाद जाना है कहीं, तो वो 10 बजे निकल जाते हैं हरिनाम के लिए, 10 से 12 बजे वो हरिनाम में जाते हैं और वापस आते हैं। 15-20 भक्तों ने शुरू कर दिया, दे हैव स्टार्टेड, दे लीव एट 10 o'clock फॉर हरिनाम और 12 बजे तक वापस आते हैं। तो जो प्रसाद लिया है 9 बजे वो सारा पच जाता है, 1 बजे बढ़िया फर्स्ट क्लास भूख लगती है, आप करके देखिए 9 बजे आप प्रसाद लीजिए 10 बजे आप निकल जाइए, 2 घंटे आप हरिनाम में होके आइए, आप देखिए क्या डिफरेंस आता है आपके कॉन्शियस। तो एक सिस्टम में अगर हम डाल लेंगे सब कुछ तो सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है, बड़ा मुश्किल है नहीं तो बड़ा मुश्किल है नहीं। और एक बार गलत आदत लग गई तो जीवन भर नहीं सुधर पाएंगे, ये याद रखिएगा। शुरू में जिसने जब अपना बिगाड़ लिया, इधर उधर जब के आकाश में तारे देखे, पंछी देखकर, बादल देखकर और बरसात में गीले गीले घूम रहे हैं, भीगते हुए जब कर रहा है, कई और साधन ढूंढ लिए हैं जब करने के, तो समझ लीजिए फिर एक बार आदत बिगड़ गई, जीवन में कभी अपने आप को रीइंस्टेट नहीं कर पाया, ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। और जिन्होंने अपना शुरू से ही ध्यान रखा है जब का, वो जीवन के अंतकाल तक ध्यान पूर्वक जब कर पाते, इज अ फैक्ट। इसलिए आप चैंटिंग जितना, इसलिए महाराज ने बड़ा अच्छा एक जगह बोला था कि सिंपली टेकिंग इनिशिएशन इज नॉट इनफ, महाराज ने एक जगह लेक्चर में बोला था, फिर महाराज कहते हैं अगर आप ध्यान पूर्वक जब नहीं कर सकते हैं तो दीक्षा लेने का क्या फायदा, उससे पहले जब तो कर ही रहे थे आप, दीक्षा लेने से तो पहले जब भी कर रहे थे, तो दीक्षा लेने के बाद आपने कौन सा जो है क्या वो कर लिया, पापड़ बेल लिया आपने, दीक्षा लेने के बाद ये है अचीवमेंट हमारा कि अब हम ध्यान पूर्वक जब करेंगे, हरिनाम जो है सर्वोपरि है और कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर मुंह मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ है इसी के अंदर। इसलिए राधा तंत्र एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि गायत्री मंत्र का भी असर तभी पड़ता है जब साथ में हरिनाम भी आता है। अगर महामंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे तो गायत्री मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे जीवन में, ऐसे हमारे शास्त्र में लिखा है। इसलिए हरिनाम जो है सर्वोपरि है। इवन गायत्री मंत्र भी क्या है, बेसिकली एक फॉर्मूला की तरह में दिया गया है, नाम को ही फॉर्मूला के रूप में दिया गया, वही तो गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र अलग से क्या है, इट्स ऑल्सो द होली नेम बट गिवन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। लेकिन कोई कहे कि कौन सा सर्वोपरि है, सर्वोपरि हमेशा हरिनाम होता है। हरिनाम सर्वोपरि है, गायत्री मंत्र सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र में भी क्या है, हरिनाम है। इसलिए ये महामंत्र जो है, इसलिए हम बढ़ रहे थे इस कृष्ण संहिता एक ग्रंथ है, कृष्ण संहिता में बड़ा अच्छा ठाकुर भक्तों ने दिया है कि सत्यु का मंत्र बताया उन्होंने, उन्होंने फिर ये बताया कि द्वापर त्रेता युग का क्या महामंत्र था और द्वापर युग का क्या महामंत्र था और कलयुग का क्या महामंत्र। तो सत्यु के महामंत्र बताते हैं कि उसमें शुद्ध शांत रस था और दास्य रस था, और उसके बाद फिर त्रेता युग महामंत्र में उसमें दास्य रस था और साख्य रस क्या कहें, एक रिफ्लेक्शन था, और द्वापर युग के महामंत्र में दास्य रस साख्य रस वात्सल्य रस तक भरपूर मात्रा में था। लेकिन कलयुग के जो महामंत्र में, हरे कृष्ण महामंत्र में माधुर्य रस तो है ही, बाकी सारे के सारे रस उसमें भरे हुए, इसलिए यह महामंत्र है, इसलिए इसको हरे कृष्ण महामंत्र कहा जाता है। कोई कह सकता है कि ये तो नाम शाश्वत है, तो सत्युग में किया नाम नहीं था क्या? तो जीव गोस्वामी ने बताया है, वो कहते हैं कि सत्युग में निश्चित रूप से यह महामंत्र था, लेकिन सत्युग में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे। इसकी विशेषता यह है, इस महामंत्र का वितरण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। यह सबसे बड़ा योगदान है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र ने दिया है, और शिल प्रभुपाल ने तो पूरे विश्व को दिया है। इसे ब्रह्म विवर्त पुराण में द्वारका में भगवान कृष्ण और गंगा जी का एक संवाद, तो गंगा जी बोल रही है कि कलयुग आने वाला है और कई नदियों को रिप्रेजेंट कर रही है, बोल रही है कि कलयुग आने वाला है, हमारा क्या होगा, हम तो दूषित हो जाएंगे, सब पाप करेंगे बहुत भरपूर मात्रा में, स्नान करने आएंगे हमें दूषित करेंगे, हमारा क्या होगा। भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, ये कलयुग धन्य है, आने वाला कलयुग धन्य है, इसमें कृष्ण भक्ति का समय आने वाला है, अधिक से अधिक भक्त बनेंगे, और एक मेरा मंत्र उपासक आएगा जो केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी भर में हरिनाम का प्रचार प्रसार करेगा, और पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्त होंगे, और ये सारे भक्त जो है भारतवर्ष भारत भूमि में भी आएंगे और आपके पवित्र जल में स्नान करेंगे, इस तरह से आपका पवित्र करेंगे। और ये आंदोलन, ये जो कृष्ण भक्ति का जो समय है, कम से कम 10,000 साल तक चलेगा। तो श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं आवर मूवमेंट विल लास्ट लॉन्ग फॉर एटलीस्ट फॉर 10,000 ईयर्स, राइट। तो ब्रह्म विवर्त पुराण जो है इसका एक प्रमाण। तो ये मंत्र उपासक कौन है, श्री प्रभुपाद जी वो मंत्र उपासक है जिन्होंने सबसे अधिक जो है फोकस किया हरिनाम। प्रभुपाद जी की जब संन्यास भी हो रहा था मथुरा में, जब यज्ञ किया जा रहा था तो अनेक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था, और उनको कहा गया कि अभी हरिनाम बंद कर दो, अभी और मंत्रों का उच्चारण करें। प्रभुपाद ने इशारा किया, नहीं नहीं हरिनाम चलने दीजिए साथ। तो शुरू से प्रभुपाद संकेत दे रहे थे हरिनाम के ऊपर, और इसलिए हम देखते हैं कि टॉम्सन स्क्वायर पार्क या कई लोग कहते हैं कि वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में सबसे पहला हरिनाम हुआ, पब्लिक स्ट्रीट कीर्तन हुआ 1966 में, और प्रभुपाद वहां पे गए और संकीर्तन किया, और कितने लोगों को प्रभुपाद ने अट्रैक्ट किया। वो जो अमेरिकन हिप्पी जो मिले थे, कहां पे मिले थे वो, सब उनको भी पार्क में तो मिले थे। प्रभुपाद ने कहा सबसे पहले मेरे सामने ब्रह्मानंद और अच्युतानंद आए थे, दे डांस बिफोर मी, ब्रह्मानंद इज माय फर्स्ट डिसिपल इन अमेरिका। तो ये लोग आगे वहां पे डांस किए थे प्रभुपाद जी के सामने, संकीर्तन में भाग लिए थे, प्रभुपाद जी के मुख से शुद्ध नाम का उच्चारण उन्होंने सुना, शुद्ध नाम का उच्चारण सुनते उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। शुद्ध भक्त के मुख से जब हरिनाम सुनेंगे तो क्या क्रांति आ सकती है, अब उसका अंदाजा नहीं लग सकता। इसलिए हरिनाम बहुत जरूरी है, हमारा मूवमेंट जो हरिनाम से शुरू हुआ है।